राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे बीकानेर में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
गोस्वामी जी की महाराज की वाणी विचित्र है। सूर सूर तुलसी शशि चंद्रमा के समान बहुत देदीप्यमान हुए हैं। श्री मधुसूदनाचार्य हुए हैं जिन्होंने अद्वैत सिद्धि लिखी है। गीता पर गूढ़ार्थ दीपिका संस्कृति टीका बड़ी नामी टीका है। विद्वत समाज में बड़ा उसका आदर है। उन्होंने लिखी है, उन्होंने एक श्लोक लिखा है तुलसीदास जी महाराज के लिए। ये काशी क्षेत्र है, मुक्ति धाम है, इसको आनंद कानन कहते हैं। आनंद बने, आनंद बन। तो उन्होंने लिखा है आनंद कानन है यस्मिन जंगमश तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। बताया कि इस आनंद कानन में जंगल में वृक्ष उपते ही है, तो आनंद कानन है यस्मिन। ये जो काशी क्षेत्र है आनंद वन है, ये आनंद कानन में एक तुलसीदास थी, एक वृक्ष तुलसी। कैसा तुलसी? जंगमश तरुषी तरु, जूते जो तरु होते हैं वो स्थावर होते हैं। मानो तुलसी का पेड़ स्थावर है, वृक्ष जितने स्थावर होते हैं। यहाँ पर एक जंगमश तुलसी तरु, चलते फिरने वाला तुलसी तरु है। और उस तुलसी के ऊपर मंजरी आती है, तो मंजरी मेरी कविता है। और मंदरी के ऊपर भंवरा आकर बैठता है फूलों पर। जो कविता मंदरी यस्य राम भ्रमर भूषिता, राम जी रूपी भ्रमर उस पर बैठते हैं। मानो कविता में राम जी विराजमान होते हैं, ऐसी सुंदर कविता है तुलसी संगम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कविता विलक्षण है। केशव कवि हुए हैं, उन्होंने रामचंद्रिका लिखा है, बड़ी सुंदर कविता है, कवि समाज में बड़ा मान है। तो केशव कवि से पूछा कि कविता किसकी बढ़िया है, तो केशव कवि ने कहा कविता मेरी बढ़िया है, मेरे समान कविता नहीं, बढ़िया मेरी कविता है। कहते गोस्वामी जी की वो कवि की कविता नहीं, वो तो वेद की ऋचा है, वो तो वेद के मंत्र हैं, कविता मेरी बढ़िया है। तो गोस्वामी जी महाराज संत थे, वो कवि तो उनके साथ थे, कवि पढ़ने कवि से उनकी प्रशंसा नहीं है। जैसे हनुमान जी महाराज की कोई प्रशंसा करे, हनुमान जी देवता है, तो देवता मानना हनुमान जी की निंदा है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, तो भक्तों का दर्द देवताओं से ऊंचा होता है। तो ऐसे संतों का दर्जा कवियों से ऊंचा होता है। कवि कविता से कल्याण नहीं होता, संतों के वचनों से उनकी वाणी से कल्याण होता है, उद्धार होता है, लोक परलोक सब सुधरते हैं। तो ऐसे गोस्वामी जी महाराज की कविता बहुत विलक्षण है। तो इन्होंने संत की वाणी है और कविता की दृष्टि से भी बड़ी ऊंची कविता है। कविता ही नहीं है, जैसे श्रुति और स्मृति कहते हैं, वेदों की वाणी वो श्रुति कहलाती है, ऋषियों की वाणी वो स्मृति है, जैसे मनुस्मृति है, जागरण स्मृति है, शंख स्मृति है, लिखित स्मृति है, ऐसी स्मृतियां कई है, 18 मुख्य है उसमें। उन स्मृतियों में जो प्रमाण है वो वेद की तरह ही कोई स्मृति का वचन कह देता है तो आदमी चुप हो जाते हैं, मानो वो इतना प्रमाण माना जाता है वेद की वाणी स्मृति और स्मृति। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज की वाणी कोई कह दे तो स्मृति की तरह चुप होना पड़ता है। तो गोस्वामी जी महाराज एक महर्षि है, महर्षियों की स्मृति होती है, ऐसे श्रुति की तरह कवि लोग कहते हैं और लोगों में स्मृति की तरह उनकी वाणी का आदर है, ऐसे श्री गोस्वामी जी महाराज हुए हैं। उनका जन्म हुआ तब वो राम बोले थे, इस बार उनका राम बोला नाम था, राम बोला। पीछे संतों की कृपा से नरहरिदास जी महाराज संत थे, उनके शिष्य हुए, वहां पढ़े, उनसे रामायण सुनी, वाल्मीकि रामायण, रामायण का बोध हुआ। कहा भी मैं शुक्र खेत में मैं सुनी थी गुरु जी से, बालकपन था, बहुत अतीत था, उस समय ज्ञान नहीं था, गुरु जी बार बार कही तो कुछ ज्ञान हुआ। ऐसे बंधु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु बसन रवि कर निकर। ये वंदना में आया है। गोस्वामी जी महाराज को नौ की संख्या बड़ी प्यारी लगती है, राम नवमी है ना, नवमी के दिन राम जी ने अवतार लिया, तो वो बड़ी प्यारी है। इस वास में रामायण में कोई विशेष बात कहती है तो नौ दफे कहते हैं उस बात को, नौ तरह की उपमा देते हैं, नौ नौ संख्या की बड़ी विलक्षणता है। राम नाम की महिमा कही तो 19 में से 9 18 19 से 27 तक नौ दोहों में नाम की वंदना का प्रकरण है। ऐसे बहुत से प्रकरण है। वे गुरु गुरु से महाराज गुरुजी महाराज लिखते हैं तो पहले जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण में गुरुपद कंज गुरु स्तुति है वो विलक्षण है, और सब जगह ही अंत में एक अक्षर मिलते आते हैं, नया ना माया ना, ऐसे ना 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 आते हैं सब श्लोकों में। गुरुपद कंज उपासन ना नहीं है उसमें, उसे वंदु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोहतम पुंज, जासु बसन रवि कर निकर, री री भी नहीं रहा, री रे लिया। इसका मतलब है कि गुरु से गुरु महिमा है वो सबसे श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम है, उनसे सब ज्ञान होता है। गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ निरोध कृत, ऐसे उन्होंने रामायण बढ़ाई है। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने पहले अयोध्या कांड बनाया है। अयोध्या कांड में गुरु वंदना, बालकांड से तो बालकांड में भी गुरु वंदना है और किसी कांड में गुरु वंदना नहीं है। तो गुरु वंदना आदम आदि में करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विशद यश जोक्तायक फल चार। तो ऐसे अयोध्या कांड में गुरु वंदना है, फिर ग्रंथ शुरू किया है पीछे, अयोध्या कांड पहले बनाया है तो फिर वह गुरु वंदना करी है। तो अयोध्या कांड की रचना करी पहले। गोस्वामी जी महाराज अपने लिए आदर्श भरतजी महाराज को मानते हैं। भरतजी महाराज हमारे आदर्श है, गुरु है, उनके अनुसार अपना आचरण ऐसा प्रेम होना चाहिए। इस बार से सबसे पहले भरतजी के चरण चरण वंदना लिखी है। भरतजी महाराज की चरण वंदना भी विलखण करी है। एक तो ब्रह्मा जी महाराज और एक क्या ब्रह्मा जी महाराज एक भरत जी की, इनकी चरण वंदना करी है। बंधु विधि पद रेणु, वहां रेणु की प्रशंसा करी है। यहाँ भरतों प्रथम भरत कर चरणा, इनमें कमल की उपमा नहीं दी है। दूसरे जितने एक है महात्मा वो सबको कमल की उपमा दी है। पद से हो जाता कमल लिखा है। आप कोई प्रतिमा देखो जिन्होंने चरण कमल लिखेंगे, चरण कमल ही लिखेंगे। आप जितनी सुपाए याद कर दो वंदना में, भरत के चरणों में चरण लिखा है और ब्रह्मा जी के बंधु पद रेणु रेणु की प्रतिमा पर प्रणाम किया है। तो इनको चरण की उपमा कमल की उपमा क्यों नहीं दी कि भरत जी के लिए कहते हैं ऐसे हुए हैं जो भगवान के चरण कमलों में इनका मनोभावना रहता है। तो अगर भरत जी के महाराज के चरण दे दे तो चरण नजीक हो रहे वहीं जाएंगे, भगवान कैसे जाएगा हमारा मन। इस वास्ते बड़ी सावधानी से भरत के चरण है, नियम प्रत्याश है। ऐसे ब्रह्मा जी को कमल के उपमा क्यों दी नहीं कि ब्रह्मा जी तो पैदा ही कमल से हुए हैं, उनको चरण की उपमा देने से तिरस्कार होता है। इस वास्ते उनकी रेती हुई नमस्कार किया है। ऐसे गोस्वामी जी की सावधानी बहुत विलक्षण है। हमें तो एक गीता एक रामायण है, दो ग्रंथ बहुत विलक्षण महत्व, दो ही अवतार है, दो ही भाषा है, दो ही तरह का उपदेश है जिससे भी इससे मिलता है। तो गोस्वामी जी महाराज की कविता विचित्र है। अब ज्यादा न कह करके गोस्वामी जी कुछ बातें कहता हूं। नारायण 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 राम राम राम। तो अयोध्या कांड में भरतजी महाराज के चरित्र का वर्णन है। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अगर संसार में भरत का जन्म न होता तो तुलसी से सट ही राम सन्मुख करत को, भगवान के सन्मुख भरत जी के चरित्र ने मेरे को किया। इस वास्ते भरत के चरित्र का पहले वर्णन किया है। तो भरत के चरित्रों का वर्णन करते करते गोस्वामी जी महाराज साथ में चलते हैं। रामायण का जहां जहां वर्णन है वहां प्रायः जगह ये बात आई है कि गोस्वामी जी महाराज राम जी के साथ रहे, यहां प्रात रघुनायक जागे, यहां वहां दशकंदर के रहा हरा, दशकंदर का तो वहां खड़ा है और गोस्वामी जी का यहाँ राम जी का, तो राम जी के साथ रहते हैं। तो राम जी और इनका वर्णन तो राम जी के साथ रहते हैं। जब भरत का चरित्र वर्णन करते हैं राम जी का करते हैं तो यहाँ भरत कर ये बात बताई, वहाँ राम जी है यहाँ भरत जी है। तो भगवान के साथ रहते हैं, भक्त होता है तो भक्तों के साथ गोस्वामी जी रहते हैं। भगवान कहते हैं मेरा ये निश्चय है कि राम ते अधिक राम करदासा, मोरे मन पड़ु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। तो और चरित्र में राम जी के साथ रहते हैं, अगर भरत जी का चरित्र हो तो ये भरत जी के साथ रहते हैं, राम जी वहां है और यहाँ भरत की बात ऐसा कहते हैं। तो भरत जी के प्रति इनका विशेष भाव था। और जासु नेम व्रत दायन वर्ण प्रथम भरत कर चरण नमस्कार किया। इसका नेम व्रत वर्णन में नहीं आता, इतना नेम व्रत है, वैराग्य है, प्रेम है, भक्ति में विलक्षण बात है। तो गोस्वामी जी महाराज भरतरी के चरित्रों को लिखते हैं तो आप भी नियम में चलते हैं, और कोई कांड में नियम में नहीं चलते गोस्वामी जी। कहीं चौपाया अधिक कर दी, कहीं चौपाया दोहा कर दिया, कहीं दोहा दो दो दोहा कर दिया, कहीं दोहा सारा सोटा कर दिया, कहीं छंदर सोटा छंदर दोहा कर दिया, ऐसे रामायण में चलता है। पर भरत जी के चरित्र में अयोध्या कांड बहुत बड़े कांडों में है, इसमें चलेंगे तो चौपाया आठ चौपाई एक दोहा, आठ चौपाई एक दोहा, आठ चौपाई एक दोहा, और 24 दोहा और 25 में छंद और एक दोहा लिखेंगे और 8 चौपाई एक दोहा, इस क्रम से ठेर तक चले। परंतु एक दोहा और 8 चौपाई बढ़ जाती है, इस बार से अयोध्या कांड के अंत में 25 होना जिससे 26 हो गया है। वहाँ भरत चरित करी नेम तुलसी जे सादर सुनहि, श्री राम पदम प्रेम अवश्य होई भवरस वृद्धि, ये 326वां दोहा है। होने से 325वां, क्योंकि 5-5 चले तो 325वां दोहा होना चाहिए, तो एक दोहा बढ़ गया। तो इसके विचार किया कि एक दोहा कैसे बढ़ा और कहाँ बढ़ा, तो इस विचार से आता है तो जब 110 दोहा हुआ है, 109 दोहा हुआ वहां, तो उनसे बाद सोपाए थे लिखते लिखते वहां कई अवसर के तापस आवा, यहां से लेकर और तेपितुमात यहां तक 8 चौपाई और दोहा बढ़ता है। तो ये चौपाई और दोहा है गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी में नहीं लिया, उन्होंने उनको तो 25-25 ही लिखते चले गए। तो ये एक विशेष गोस्वामी जी महाराज की घटना है, बहुत विशेष, तो वो आपको आज सुनाता हूं मैं। यहाँ ये एक दोहा 8 चौपाई बढ़ी है। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं चरित्र, तो राम जी के साथ में चलते 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 प्रयागराज से अगर जमुना जी पहुंचे तो जमुना जी पार किया, वहां से पूछते हैं मार्ग भरद्वाज, भरद्वाज ऋषि है, परमारथ पथ परम सुजाना, पारमार्थिक मार्ग में बड़े विलक्षण जानने वाले हैं, तो उनसे ही पथ पूछा है। और वाल्मीकि जी से स्थान पूछा है, क्योंकि रामायण राम जी का स्थान बनाने वाले हैं, तो उसे स्थान पूछा, और वे परमार्थ मार्ग में परमेश्वर पंथ पूछा। पंथ पूछा तो भरद्वाज जी ने पूछा भाई विद्यार्थियों को बुलाए, तो वो 50 आए, 50 विद्यार्थी आए उस करके। तो 50 क्यों आए, एक एक वो एक एक चीज सिखाई हुई थी, 4 वेद 4 विद्यार्थियों को, 4 उपवेद 4 विद्यार्थियों को, 6 शास्त्र विद्यार्थियों को, 18 पुराण 18 पुराण एक एक विद्यार्थी, तो ये 50 हो जाते, 18 पुराण 18 उपुराण 36 और 4 वेद 40, 4 उपवेद 6 शास्त्र 50 दे, जो एक 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 याद था, ऐसे 50 आए। उन 50 में से 4 बार विद्यार्थियों को राम जी के साथ भेजा कि तुम जाओ, 4 प्रभु वेद श्रुति सेतु पालक राम तुम दीश माया जानकी, श्रुति सेतु पालक राम तुम, तो वेद की रचा पालन करने हुए राम हो। तो 4 वेद पढ़े हुए थे, उन 4 वेदियों ब्रह्मचारियों को मार्ग दिखाने के लिए साथ में भेजे। वे बालक जमुना जी के इस किनारे से पीछे लौट गए, अब जमुना पार हुए। जमुना पार हुए तो गोस्वामी जी के मन में आया, वहां जमुना पार होते उस किनारे राजापुर गांव है, राजापुर जो गोस्वामी जी महाराज का जन्म स्थान है। गोस्वामी मैं आया, उस समय मैं होता साक्षात दर्शन कर लेता, परंतु मेरा जन्म भी कलयुग में हुआ, उसमें जन्म नहीं था। ऐसा मन में आया, पार होते ही सब लोग इकट्ठे हो गए, पूछते हैं आपस में, तो गोस्वामी जी के मन में ऐसी बात आ रही है। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम जी का स्वभाव है अपने सेवक की रुचि रखते हैं, तो सेवक की रुचि गोस्वामी जी के दर्शन करने की, दर्शन में तो त्रेता युग में हुए, ये हुए कल युग में, सम्मत 1631 करो कथा हरिपद दर्शी सा, भिक्षु में 16 समय कथा करी, तो कैसे दर्शन हो। तो मन में उत्कंठा हुई कि मैं दर्शन करूं, तो वो उत्कंठा होने से भगवान ने उनकी उत्कंठा पूर्ण करी। तो 10वां दुआ आया सदा, 9वां दोष दुआ आया है कि सदा विदा किए बट चार विनय करी किए भले पाए मन काम, उतर न है दमुन जन जो शरीर सब श्याम। विद्यार्थियों को पहले पैदा कर दिया, विदा कर दिया, अब यहाँ कर विदा किए बट विनय करी और फिरे चाहे मन कामना मन कामना पूरी हो गई। अरे उतरी नहाए जमुन जल, उतर करके जमुना जी में स्नान किया, जो शरीर शमश्याम। और सुनत तीरवासी नर नारी धाये निज निज काज विसारी, लखन राम सी रूप सुंदरताई देख करे निज भाग्य बढ़ाई, अति लाल सा बसही मन माही नाम गाम पूछत सकुचाही। जे तिन मृदि वयसयाने, बूढ़े थे उन्होंने तिन करी जुगत राम पहचाने, राम जी को वनवास हुआ ये बात तो सुनी थी, अब जुगत कर देगा कि यही राम जी है पहचाने। सजल कथा तिन सकल कथा तिन तुने सुनाई, बने ही चले पितु आयु सुभाई। उन्होंने सब कथा चलाई कि पिता की आज्ञा के लेकर के और राम जी वनवास में चले हैं। सुन सविषाद सकल पछताई, रानी राय की भरना है, सब पछता जब कहते हैं कि राजा जैसे रानी ने काम अच्छा नहीं दिया, ऐसे राम जी जैसे बेटे को जंगल में भेज दिया, राजा और रानी दोनों ने काम अच्छा नहीं दिया, ऐसी बात कर रहे थे सब। जमुना जी गए उस पार, तई अवसर एक तापस आवा। अब ये वहां पर तपसी कौन है, नाम नहीं लिखा कौन तपसी थे, बन लिखा कहेंगे तई अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु वयस स्वभावा। तेज पुंज थे और छोटी अवस्था थी, कवि अलग हित गति वेश विरागी, कवि अलग हित गति। कवि क्या किया, गोस्वामी जी महाराज ध्यान में मग्न हो गए, लोग सब मिल रहे हैं बातें कर रहे हैं, तो राम जी के साथ में ही थे, ध्यान लग गया। उस ध्यान में ये अवसर आया, गोस्वामी जी महाराज आए तो सब लोग आए, सबके सामने गोस्वामी जी भी आ गए, और वो तपसी कब अलग अलग गति, कभी तो ध्यान में बैठे चुप हो गए वहां अलग गति, कभी वो क्या पता है, कभी तो चुप थे। ऐसे समय में अब लगे गति वेश विरागी, अरे तन मन वचन राम अनुरागी, तन मन वचन से राम जी के प्रेमी, ऐसा वो एक तपस्वी आया। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परे दंड जी में धन तरह दशान जाए बखान। सजल नयन नेत्र जला रहा है और तनु की रोमांच खड़े हो रहे हैं, पर मन क्रम वचन राम हो परे दंड जिमी धरणी जल, जैसे दंडा पड़े पृथ्वी पड़कर राम जी के चरणों में नमस्कार करते हैं, दशा न जाए बखान, उनकी दशा बखान में नहीं आती। इष्ट देव श्री राम जी महाराज मिल गए आज, ऐसी मस्ती हो गई। राम सप्रेम पुल उर लावा, राम जी ने पड़े हुए गोस्वामी जी को उठा करके लगाया, परम रंग जो पार्श पावा, कैसी प्रसन्नता हुई, जैसे अत्यंत दरिद्री हो और उसको पार्श मिल जाए। तो राम जी महाराज अत्यंत दरिद्री है, क्योंकि राम जी को तो त्रेता युग में जन्म हुआ, अब गोस्वामी जी का हो कल युग में, तो त्रेता कलयुग में होने वाले को त्रेता में कैसे मिले, परम रंग के मिलना बड़ा दुर्लभ, तो ऐसे खुश हो गए कलयुग में जितने होने वाला है उसके प्रेम से मिले परम रंग जन पार्श पावा मनु प्रेम परमार्थ दो। गोस्वामी जी महाराज का तो प्रेम है, रघुनाथ जी महाराज सास परमार्थ है, भगवत स्वरूप है, और ये प्रेम मिले मिलते धरे कहतन सबको, सब लोग कहते हैं गोस्वामी जी से मिले और जितने लोग आए उन सब में सब लोग ऐसा कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मैं सब लोगों के सामने गोस्वामी से मिल रहा हूँ, वहां के जब लोग थे सब सामने, तो सब लोगों के सामने मिले, ये विलक्षणता हुई कि त्रेता युग में कलयुग में होने वाले गोस्वामी जी महाराज वहाँ मिलते हैं और वहां के लोग सब कहते हैं ये तो प्रेम और परमार्थ दोनों ही आ गए, ऐसे लग गए और बहुरी लखन पायल सही लगा। फिर राम जी से मिले, राम जी मेरे बात लखनलाल जी के चरणों में पड़े, लेन उठाए उमगन राजा लक्ष्मण जी ने उठा करके हृदय लगाया, प्रेम से मिले। पुनसीय चरण धूरी धरी शीशा, गोस्वामी जी महाराज लक्ष्मण जी से मिलकर के माता सीता के चरणों की रज्जी लेकर के अपने शीश पर चलाई, माँ मिली माँ मिली। पुनसीय चरण धूरी धरी शीशा, जनन जन जान शिशु दी न शीशा, माँ ने अपना बच्चा समझ करके और यहाँ से आशीर्वाद दिया। किन निषाद दंडवते ही, तो भगवान के साथ निषाद राज थे, तो निषाद राज ने संतों को नमस्कार किया, गोस्वामी महाराज साधु थे, वेश विरागी बैरागी वेश था इनका, वो दंड पे किन निषाद दंडवते ही मिले मुझे लख राम सुने, तो गोस्वामी जी महाराज निषाद राज से बड़े प्रसन्न होकर मिले, भगवान का भक्त है ऐसा समझ करे, पियत नैन पुष रूप पीयूषा, ऐसे देख भगवान के सामने खड़े रह गए तो नैन रूपी नेत्रों से उनके रूप पीयूष को पीते है, भगवान का रूप है पीने लगे। मुदित सुवसन पाए जी भूखा, अत्यंत भूखा हो और अमृत का भोजन मिल जाए, वो जैसे भोजन लेता है ऐसे नेत्रों से पीते रहे हैं। तो मिलन तो बताया है पर वियोग नहीं बताया, ऐसा विचार कर गोस्वामी जी को पीछे बाहर वृत्ति हुई तो आठ चौपाई एक दोहा ये लिखा हुआ पाया, गोस्वामी जी नहीं लिखा, ये हनुमान जी महाराज ने अपनी वाणी से लिख दिया। तो गोस्वामी जी कहते मैं तो मेरा 25 दोहा करूंगा या 26 दोहा हो जाते हैं, तो ये गोस्वामी जी का लिखा हुआ नहीं है, हनुमान जी महाराज ने लिख दिया। गोस्वामी जी का चरित्र फिर बाहर से आए तो इतने मस्त हो गए जिनको याद नहीं रहा हुआ, अब वे कहने लगे ते पितु मात कहो सर कैसे जिन पठिए बन बाल कैसे, ये चौपाई पहले आ चुकी है, तो हौस नहीं था मस्ती में थे, तो वो चौपाई फिर ते पितु मात कहो सर कैसे जिन पठिए बन बाल कैसे, ऐसे कह करके फिर राम लखन सी लघु रूप निहारी हो या सने विकल नर नारी, तगुरी अनेक विधि सिखावन दीन राम हृदय शीष धरि पवन कवन दी, सखा को वहां से पीछे भेज दिया, अब आगामी वनवास में चले। तो राम जी ने कलयुग में होने वाले गोस्वामी जी को दर्शन दिए, त्रेता युग में अथवा अपने कलयुग में लिखने वाले गोस्वामी जी के सामने अपने त्रेता युग में होने वाले मिलन को बता दिया, और वो बता ही दिया नहीं है लिख भी दिया, तो गोस्वामी जी कहते मैं तो मेरा 25 द्वार 26 संत लिखूंगा, अब ये द्वार ये 8 चौपाई है एक द्वार ही अधिक पड़ता है, तो इसमें संख्या बढ़ी है और भी तो 25 बजे 26 संख्या हो गई अंत में जाते हुए, क्योंकि एक संख्या ये पड़ी दो है की, ऐसे गोस्वामी जी महाराज जी। अब एक इसमें शंका होती है कि उसमें लिखा है थे अवसर एक तापस आवा तेज पंजु लघु वयस सुहावा, लघु वयस बिता है, गोस्वामी महाराज की अवस्था बड़ी थी, जब रामायण लिखी है उसमें 100 वर्षों से ऊपर अवस्था हो गई थी, ऐसी अवस्था में लघु, इसमें लिखा है लघु वयस। तो गोस्वामी जी महाराज भक्त थे, भक्त कितना ही बड़ा हो जाए वो अपने सदा ही लघु ही मानता है, और ज्ञान मार्ग में पहले होते ही ब्रह्म हो जाता, पहले आरंभ में ही वो बड़ा ही होता है, और वर्ष भगवान मिल जाए, सिद्ध हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत व्याप्ति हो जाए, तो भी अपने को लघु ही मानता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण लिखी, रामायण के बाद आपने विनय पत्रिका लिखी भगवान जी को, भगवान रामचंद्र जी महाराज तुम ये बालक थे, क्यों बालक थे, भक्ति के भाव से वे अपने को छोटा ही मानते थे, इसकी पहचान विनय पत्रिका में आती है। विनय पत्रिका में सीता जी की विनय करते हैं, सीता जी की विनय करते हैं, तो सीता जी को कहते हैं, बालक होता है ना, मां से कहने में संकोच नहीं करता, पिताजी के सामने बोलने में संकोच करता है, तो विनय पत्रिका में बोलने मां से बोलते हैं, किस पद कबू की मेरी ही सुत जाए भी कछु कर्ण सुनाए, कर्ण कथा चलाए। गोस्वामी जी महाराज सीता जी से कहते हैं कि मां मां मेरी एक काम करता, तो भगवान श्री राम जी के सामने मेरी बात कह देना, और पहले कह देना कि महाराज एक ऐसा है वो अच्छा नहीं है, ऐसा मंद है, तेरा नाम मत सुनाना, भगवान की दृष्टि चली जाएगी मेरी तरफ, देखेगी नहीं, तो मां तुम कब होगी अम्ब अवसर पाए, मेरी ही शुद्ध ध्याय भी कछु कर्ण कथा चला, ये पद है विनय पत्रिका। कब होगा अम्ब अवसर पाए, माँ मौका लगने पर, तो अवसर क्या, अवसर ऐसा हो कि रघुनाथ जी महाराज भक्तों की कथा सुनते हुए प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए, उस समय मेरी कथा कह देना, मेरा नाम लेना, हर समय मत कहना, किसी मेरे चरित्रों के जब ध्यान हो जाएगा तो स्वीकार नहीं करेंगे, तो करुण कथा चला करे, अवसर पा करके मेरी ही शुद्ध जाए, मेरी भी याद ना देना माँ, इसलिए करते वहां फिर कहते हैं कि आप अगर मेरी सिफारिश कर दोगी तो माँ मैं कर जाऊंगा, और आपके नाथ तव गुण गाय, आपके प्राणपति रघुनाथ जी वाले गुण गाऊंगा। ये घूस देते हैं माँ को भी, लोभ देते हैं कि मैं राम जी के गुण गाऊंगा और मेरा काम बन जाएगा, तो माँ इतनी कर मेरी सिफारिश कर देना। तो माँ से बालक कहता है, पिता से संकोच करता है, तो ये बालक की पहचान है, तो ये तो इस वास्ते बालक से बताया इनको कि लघु वयस स्वभाव, लघु वयस में स्वभाव, तो इनका भाव लघु ही रहता है, ठेर तक भक्तों का भाव सदा लघु रहता है, वे अपने में बड़ा मानते ही नहीं, ज्ञान मार्गी तो ब्रह्म से नीचे पग रखते ही नहीं, सीधा ही ब्रह्म ही बनते हैं, और भक्त लोग जो प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तो भी अपने को बालक ही मानते हैं, इस वास्ते लघु पैर स्वभाव आया है। कवि अलग ही थी गति, तो कवि कैसे अलग है, कवि तो उस समय ध्यान में बैठे हैं, गोस्वामी जी महाराज तो रघुनाथ जी से मिल रहे हैं, लोगों के सामने ये ध्यान में बैठे थे, अलग ही थी गति, उन गति को कवि जानते ही नहीं, कवि को पता ही नहीं है, अरे मन क्रम पसंद राम अनुरागी, मन से क्रम से वचन से राम जी के प्रेमी है, ऐसे मिल रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज पर श्री रघुनाथ जी महाराज की बहुत विशेष कृपा थी, और कृपा से ये रामायण लिखी गई। इस बात रामायण का गीता जी का अगर पाठ करे तो ये दोनों ग्रंथ प्रासादिक ग्रंथ है, कृपा करते हैं। रामायण मामूली पढ़ा हुआ आदमी रामायण पढ़ सकता है, रामायण का अर्थ कर सकता है, और बड़े बड़े पंडित धुरंधर 6 शास्त्रों चारों वेद जिन्होंने पढ़े वे भी रामायण का अर्थ करें तो बढ़िया अर्थ नहीं कर सके विद्या के जोर से, और जिनके हृदय में भक्ति होगी उनके सामने गोस्वामी जी का अर्थ साफ साफ दिखेगा, बड़ी सरल सीधा है। गोस्वामी जी दस्ता करने लगे तो रामायण अध्यात्म रामायण से ज्यादा मिलती है, तुलसी रामायण तो वे भी संस्कृत में लिखने लगे। ऐसी हमने एक बात सुनी है, तो वो दिन में लिखते रात में लिख रहे थे, रात्रि में गायब सुबह देव है ही नहीं, काशी में लिखा करते थे। तो विचार किया क्या करूं, ग्रंथ में लिखता हूँ गायब हो जाता है। तो शंकर भगवान ने आज्ञा दी, संस्कृत में तो बहुत से ग्रंथ है, तुम भाषा में लिखो। तब भाषा में लिखना शुरू किया गोस्वामी जी महाराज ने। तो एक ही बाणी विचित्र है। और ये अवतार कैसे है, जैसे राम जी का अवतार संवत 1631 करूं कथा हरिपदर शीशा, तो 31 में नौमी भोमवार मधुमाशा, चैत के महीने मंगलवार बार है और नौमी तिथि है। तो ये जैसे गोस्वामी जी महाराज मतलब राम जी ने जैसे अवतार लिया, तो अवतार के समय चैत का महीना था, नौमी तिथि थी, भोमवार मंगलवार उस दिन बार था। तो जैसे गोस्वामी जी महाराज देखते हैं कि राम जी के अवतार का दिन है, ऐसा दिन आवे तो लिखूं मैं, तो लिखते रहे 31 वर्ष में नौमी सिद्धि दिन मंगलवार बार तिथि नक्षत्र सब, जैसे राम जी की जन्म कुंडली है ऐसे गोस्वामी जी के रामायण की जन्म कुंडली है। तो वो बार तिथि देखते रहे, जब वैसे ही बार आया, तिथि आया, नक्षत्र आया, सब बेड़ा पुल ठीक मिली, तब ये रामायण की लिखना आपने शुरू किया। और गांव में रामायण लिखी जिसमें धनाधन लिखते चले जा रहे थे, इनको कोई सोचना पड़ता नहीं था। जैसे दूसरे कवि होते हैं वो सुवर्ण को ढूंढते, फिर वो अच्छे अक्षर ढूंढते हैं और चरण धरत धरकत के नेकन भावत शोर, सुवर्ण को ढूंढत पवे कवि व्यभिचारी चोर, चरण धरत धरकत यों नेकन भावत शोर, कवीर व्यभिचारी और चोर ये चुप कर काम करते हैं। चरण धरत धरत शोर और व्यभिचारी होता, चरण धरत में धड़कन उठती है, और ये भी चरण रखते हैं तो चरण धरते ही धड़कन उठती है। और सुवर्ण को ढूंढते चोर होता है तो सुंदर ढूंढता है, और व्यभिचारी तो सुवर्ण अच्छे शासन वाले सुंदर रूप देखता है, और कवि सुवर्ण अच्छा वर्ण देखता है अक्षर। तो सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, चरण धरत धरकत और नेकन भावत शोर। हल्ला गुला नहीं सुबाते आदमी करते है, ये चोरी भी हल्ला गुला कैसे करे, मनुष्य में कैसे करे, ऐसे कवि होते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज साधारण कवि नहीं थे, ये संत थे, और वे लिखने में साफ लिखते हैं, कवि न हो नहीं चतुर कहा हूं। मैं कवि नहीं होता हूँ, मैं चतुर कहने के लिए ग्रंथ नहीं लिखता हूँ, मैं तो मति अनुरूप राम गुण गाऊ, मैं तो राम गुण गाता हूँ, राम जी गुण गाता, मैं कवि न हो। और लिखा है कि महाराज छंद है, प्रबंध है, इसमें कितने कितने कविता के भेद होते हैं, कवि रस रस रंग रस है, अलंकार है, गुण भेद है, दोष है, गुण दोष ऐसा गुण हो वो कविता लिखे जिसको काव्य का बोध हो। तो कहते हैं मेरे में एक नहीं है, सत्य का हूँ लिखे कागज कोरे कोरे कागज पर लिखता हूँ और सत्य कहता हूँ, कवि विवेक एक नहीं मोरे, मेरे कविता का विवेक नहीं है। ये क्या है, कविता ऐसी लिखी, फिर कहते कविता विवेक नहीं। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके अभिमान नहीं होता, वही भगवान को प्यारे होते हैं। निर्मल जन निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोह कपट सर छिद्रन भावा। तो वे इतने सरल होते हैं, लोग उनको मूर्ख कह देते हैं, बेसमझ कह देते हैं। तो बेसमझ क्यों कह देते हैं कि चालाकी नहीं होती, सरल स्वभाव होता है, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। नारायणता भगत की लगे किनारे नाव, सरल स्वभाव, न चतुराई है नहीं, कपट गांठ मन में नहीं। तो गोस्वामी महाराज बहुत सरल थे। ऐसे हनुमान जी के चरित्र को आप देखो, तो हनुमान जी वे वहां पहले समुद्र के इस किनारे पहुंच गए, अब इन किनारे पहुंचे तो अभी कोई समुद्र पर उदास समुद्र पर उल्लंघन कौन करेगा, तो सब तरह के लोग चलने लगे, विचार करने लगे। तो सबने अपना अपना बल बताया, अंगद कहते मैं पार जाऊं, जो पार जाने वाले तो सब नहीं बताया। अंगद के मैं पार तो जा सकता हूँ, परंतु संशय है फिर तो मैं पांचों अंग नहीं पहुंचा। 400 कोस समुद्र जिसके कूद कर चले जाना कोई मामूली बात है। हनुमान जी चुपचाप बैठे तो जामवंत के सुनो हनुमाना का तुप साथ रहो परवाना। हनुमान जी बोले आप चुप कैसे बैठे हो, आप बताओ कैसे जा सकते हो विधि। का चुप साध रहो बलवाना, अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन के समान तो वेग है आपका, और बुद्धि है विवेक है इनके घरों, विद्या है बल है आप में, ऐसे बलवाना का चुप साध रहे हो बलवाना, आप बलवान हो ऐसे कैसे बैठे हो ऐसे। गोस्वामी जी एक हनुमान जी चुपचाप सुनते रहे। सुनते सुनते जाम्बवान ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार राम काज है तो राम काज करी देखो आतुर। राम जी का काम करने के लिए तो आतुर होता है, जैसे क्षुधातुर होता है भूख लग जाए, तृषातुर प्यास लग जाए, उसे तृषा आतुर कहते हैं। बाड़ी बैठे तृषा मरे हो भूखा मरे है। तो गोस्वामी जी महाराज राम काज करी देखो आतुर, राम का काज लेने के लिए मरे तृष्णा कोई प्यास लग गई है। तो जब कहा राम ला राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही भयो मोहता कारा। राम जी के काज की बात करे तो जट बड़े हो गए पर्वताकार हो गए, चुपचाप छोटे से बैठे थे। अब खुशी आएगी राम जी का काम है तो राम काज करी मेरे को आतुर पर्वताकार हुआ। फिर बैठा जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोई। जामवंत बूढ़े थे तो कहते हैं तुम वृद्ध हो मेरे को बताओ क्या करना, कैसे जाना क्या करना वहां बताओ। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम गोस्वामी जी महाराज गोस्वामी लिखते हैं हनुमान जी के लिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी हम अग्रगण्य है परंतु इतने सीधे सरल है, इनको पता नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा चतुर हूं, मैं इतना बलवान हूं, ऐसा मैं काम कर सकता हूं ये याद ही नहीं है। इस बात को कहते तुम भगवान हो तुम पूर्ण समान हो ऐसे श्रेष्ठ बताते हैं तब जामवंत में पूछो तो ये क्या करना, वहां त्रिकुटाचल पर्वत उखाड़ लाऊं। लंका के त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर बसी हुई लंका थी तो जाम कहो तो सब पर्वत लहरी छाड़ा फेंक दू अभी कहना ना पर्वत मर लाना। रावण को बाज करके सब खलम खत्म करके मैं ले आऊं सीता जी को कहना, ऐसा मत करना। तो क्या करना है, राम जी ने खबर मंगाई है सीता जी की, खबर लाना है और काम नहीं करना। तो ये कौन करेगा कि फिर राम जी जाएंगे हम लोगों को साथ लेकर के सेना लेकर जाएंगे रावण पर जीत करके और सीता जी को लाएंगे, देवता जी से जश गाएंगे, नारदास जश गई है ऐसे वो कहेंगे। ऐसा होगा तो तुम सीता को लाना मत, सीता को लाने की मना कर दी और त्रिकोटल पर भी तेरी लाना और लंका को भी उठाकर मत लाना। तुम तो केवल सीता जी को दर्शन भी देख करके और वो आ जाना, राम जी को बता दो कि सीता जी लंका में है, पता लगाने के लिए चारों तरफ बंदर भेजे गए हैं, दक्षिण की तरफ हम आए हैं। तो यहाँ गिर ने सुनपाती ने कहा कि वहां वो सीता बैठी है, गिर की दृष्टि ज्यादा होती है ना, तो उसने कहा वहां अशोक वन में शोक वृक्ष के नीचे, अशोक वन के वृक्ष के नीचे वो सीता बैठी है, मैं देखता हूँ तुम्हारे को दिखा नहीं परंतु वहां जाओ सीता मिल जाएगी, मैं देख रहा हूँ। तब लंका जाने की बात हुई। तो वहां ऐसी बात करना और वहां नहीं करना, केवल खबर लेकर के आना है। तो महाराज ये कूद करके चले गए, लंका में पहुंचे तो छोटा रूप धारण करके गए, मशक समान बन गए और अध्यात्म नाम कलविंग कहता है, कलविंग अपनी ये चिड़िया होती है गांव की चिड़ी छोटी, इतना रूप धारण किया और दूसरे आता है मशक मच्छर के समान बने और ऐसे देख गए। कोई कोई कहते हैं ऐसे छोटे बन गए तो मुद्रिका कहाँ रखी, प्रभु मुद्रिका का मेल मुख माही जरद लांग असर नाही, अब कहाँ रखे पंद्रित से कोई जेब भी नहीं था कोट कुटता ही नहीं था कहाँ रखे। तो अपने मुख में मेल ले, बंदर तो हरेक चीज मुख में मेल लेता है, बस ये खजाना है, खाने की चीज दो तो खाता है, खाते खाते मुंह भर लेता है, यूं गाल फूल जाते सब एक लेता है, बस यूं करता है, खाता रहता धीरे धीरे, तो मुख खजाना है उनके तो बंदरों के, तो मेरी मुंह माई लेकर गए। तो हनुमान जी महाराज बात इतनी कही, मंत्रिका ली तो मस्तक समान रूप धारण किया, तो मुद्रिका कहाँ रखी कि मुद्री पर भी तो ऐसी विलक्षण थी, वो जितना बड़ा हो जाए छोटी हो जाए वो भी तो भगवान की मुद्रिका थी, इस वास्ते वो वैसे ही छोटी हो गई। तो वहां पहुंचे, जहाज पहुंचे तो लंका में देखा। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड का बड़ा विचित्र वर्णन है, सुंदर है किन्नु सुंदर हूं, सुंदरकांड बड़ा सुंदर, उनकी कविता बड़ी सुंदर, लंका बड़ी सुंदर, सीता बड़ी सुंदर, और हनुमान जी का चरित्र बड़ा सुंदर, तो सुंदरकांड में सुंदर ही सुंदर सभी कहते हुए। तो वह लंका देखा तो चकित हो गए लंका देख करके। अब लंका में ढूंढते हैं सीता जी, उस ढूंढते हैं तो रात्रि का समय है, सब राक्षस सोए हैं, राक्षसियां सोती हुई, स्त्रियां पुरुष सब सोए हुए हैं, जाकर देखते हैं, निगाह करते हैं, ये सुंदर बहुत, वहां पर नाग कन्या देव कन्या बहुत सुंदर सुंदर कन्याओं को ला लेकर ब्याह किया था राक्षसों ने, रावण ने बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों को इकट्ठी की थी, तो सुंदर सुंदर देखते हुए सीता जी है, तब देखते हुए तो सीता जी नहीं है, ये तो सोती है, आराम है इसको, सीता जी थोड़ी सो सकती है, भगवान ने वियोग में, और पास में जाकर सूंघते हैं, इसकी मदिरा की गंध आती है इसमें, तो ये सीता जी नहीं है। ऐसे स्त्रियों को जाकर पास पास में जाकर देखते हैं, अब स्त्रियां सोती है, कोई अंग खुला ही है, कोई अंग ढका हुआ है, तो मन में है नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, बोल स्त्रियों को देखता हूँ, मैं स्त्रियों के अंगों को देख रहा हूँ, मेरा ब्रह्मचर्य कैसे होगा, ऐसा बिचारी तो बड़ा काम ठीक गया। इतने मन में मात आती है, ना मैं स्त्रियों को नहीं देखता, मैं तो माँ को देखता हूँ, सीता माँ को दूखता हूँ, ये माँ है, ये माँ है कि नहीं, तो मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ, ऐसे कर फिर देखने में लग गए। ऐसे उसमें गए पुष्प विमान देखा, उसमें जाकर देखा, महाराज ऐसा सुंदर वहां लिखा है, आपने कथाई की है वाल्मीकि, तो उसे पल गई बताइए, जैसे बाल बच्चा होते ही है, बंदर जैसे चेष्टा करते ऐसे ही देखते है, उसे ऊपर दीजिए सब कूद कर देगा, पुरुष विमान को देगा, सब घर देखे, इधर उधर सीता का पता लगा नहीं, क्यों सीता मेला में थी नहीं, वहां कैसे पता लगे, ऐसे खून ढूंढते ढूंढते गए, तो तेई अवसर विभीषण जागे, विभीषण की नींद खुले तो उसे राम 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 अवतार लिया, ये भगवान का भगत है, इनसे इनसे हट करी हो पहचानी, साधु के हो न कार्य हानि, नहीं तो अपना भेद डरा नहीं चाहिए न, तो शत्रु है उसकी नगरी है, तो कहते ये राम जी का भगत है, इनसे पहचान करने में कोई हानि नहीं, दूसरे को पहचान करा तो फंस जाए ना वहां पर, तो उनसे पहचान करी, उनके पास में जाकर क्या, तो वो संवाद आप रामायण में देख तो देख कैसे बड़ा सुंदर संवाद है। विभीषण ने पूछा कि महाराज आप कौन हो, क्या भगवान साक्षात आप आ गए, कोई ब्राह्मण का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण कर गए वहां, फिर कहा कि मैं तो भाई हनुमान हूँ, मेरा हनुमान नाम है राम जी दास। विभीषण कहा मेरे को भी राम जी याद करते हैं, मेरे को स्वीकार करेंगे, तो ये विभीषण जी महाराज सात्विक भगत है, भगना भगवान के तीन मित्र है रामायण में, एक निषाद राजगुह मित्र है, एक विभीषण मित्र है, एक है सुग्रीव, तो पहले निषाद राज फिर सुग्रीव फिर विभीषण, तो विभीषण ऐसा कहता है, वो सब हनुमान जी कहते हैं अरे रघुनाथ जी महाराज इतने दयालु, मोह पर रघुवीर मेरे पर भी कृपा की है, प्रात ले जो नाम हमारा ता दिन ताए मिलन आहारा, जिस दिन मेरा नाम दर्शन हो जाए तो उसको भोजन नहीं मिले, ऐसा मैं हूँ जिस पर भी भगवान ने कृपा की, ऐसे कहते कहते नेत्रों में आंसू आ गए। विभीषण तू तो पवित्र ब्राह्मण कुल का है, तुम ब्राह्मण है बड़े शब्दों में उत्तम है, तेरे पर कृपा करे, इसमें क्या नहीं क्या है, मेरे पर भी कृपा करते हैं, तो गोस्वामी जी के से हनुमान जी के कहने से विभीषण के विश्वास हो गया, फिर विश्वास हुआ दिए गए वहां से, तो हनुमान जी महाराज उनसे पता लगाया कहाँ है, तो विभीषण ने बताया अशोक वाटिका है, उसमें एक अक्षोर वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, तब पता लगा। तो फिर गया उस बैठक बगीचा में, तो वहां गया तो सीता जी नीचे बैठी हुई है, और देखा तो बंदर ठहरे, वृक्ष पर चढ़ गए, अशोक पर चढ़ गए वहां पर, और छुप छिपे बैठे हैं। उस अवसर में रावण आ गया, मंदोदरी आदि गर्दानियों के सहित आया, वो सीता को त्रास देने लगा। अब वे देख रहे वो बैठे बैठे, तो उनमें महाराज वो त्रास देवी और कहा कि एक वर्ष भर में अगर मेरी बात नहीं मानी तो बस इस तलवार से काट दूंगा। और उसने महाराज रावण सीता जी सामने बोले, अरे निलज लाज नहीं तो ही सोने घर आने, तो सच तू चोरी करके सोने घर से मेरे ले आया, अरे निर्लज तेरे को लज्जा नहीं, मैं शर्म आती नहीं तेरे को, अधम ऐसी बात बोली। इकली सीता है, स्त्री जाती है, तो रावण का राज्य है, वहां रावण का राजा है, राक्षसों के राजा ठहरे, ऐसे के सामने सीता जी इतनी निर्लज बोलती है। उनमें भी एक तिनका हाथ में लेके गए, तिनका सामने बोला समान उसके, तुम एक तिनके के समान है क्या चीज है। दूसरा अर्थ ये होता है कि पर पुरुष से बात की जाए तो कोई साथ में अच्छा आदमी चाहिए। तो सीता जी कहे, मैं पृथ्वी से पैदा हुई, ये पृथ्वी से मेरा भाई है, तो मेरा भाई है उसको साथ में लेकर रावण से बात करती हूँ, नहीं तो पर पुरुष से कैसे बात करूँ। तो तिनको साथ में लेकर गए और बात कर रही है, अरे उसको फटकार रही है तेज से, अरे मिलज तू भस्म हो जाएगा ऐसे। तो उसको गुस्सा आ गया कि मेरा तिरस्कार रावण, वरुण कहते सीते तुम कितना अपमाना, मेरा अपमान किया, अभी सिर काट रहा हूं कृष्ण कृपाना, मेरी कृपा से तेरा सिर काट दूंगा। ऐसे उसने कहा, तो कहते काट दे जल्दी जल्दी, भगवान के वियोग का दुख मैं नहीं सह सकती, मर जाऊं तो वियोग का दुख जल जाएगा, तो ठीक है तू काट ले। मैं तो नहीं महाराज, मंदोदरी का कर क्या रहे हो, स्त्री के ऊपर हाथ चलाते हो, राजा हुए बड़े हुए स्त्री बिचेरे अबलार अकेली उस पर तलवार चलाते हो। उसने रोक दिया, ये हनुमान जी महाराज बेटे देखते हैं, हनुमान जी को आ रही है मन में, फिर क्या करें। जामवान ने कहा कि देख करके आना तुम, हम रोड़ा मत करना, कहीं बल मत दिखा देना, इस बात सुनते रहे। ऐसे कर वो दिखा से चला गया, रावण चला गया। जब त्रिजा नाम एक राक्षसी थी, वो भगवान की भक्त थी, वो भी उनमें थी, राक्षसियां तरह तरह का रूप दिखाती है, डराती है, तलवार लेती है, अस्त्र शस्त्र दिखाती है, सीता जी वो दुख दे रही है। तब सीता बोली, तुम चुप रहो, ऐसे तुम दुख मत दो, तुम्हारा भाग्य है सीता के दर्शन हो रहे हैं, सीता जी के दर्शन करो, सेवा करके अपना जन्म सफल करो, ऐसे त्रिजा कह रही है। ऐसे कहते कि त्रिजा ने कहा कि एक बानर आया, एक मेरे को सपना आया है, जारी रात धाम सेना सब मारी, रावण ने सेना को तो मार दिया, सुपने में उसने बांदर ने आकर लंका जला दी। तो हनुमान जी विचार करते, भाई लंका जलाने की बात है तो सपना तो तब सच्चा हो, लंका जलाऊ तब, अब जलाने की सामग्री कहां से लाऊ। और लंका जारी और रात धाम सेना सब मारी, सेना को मारी, तो मेरे सामने सेना है ही नहीं कोई, परंतु ये त्रिजटा कह रही है जो सपना, और रावण है जो खंडित भुज भीषा शीश ने इस खंडित है गधे पर चढ़ा हुआ दक्षिण की तरफ जा रहा है, रावण मानो विभीषण के राजा हो गए, ये त्रिजटा ने सपना सुनाया। तो हनुमान जी ने सपना सुन लिया, पीछे माता के सामने प्रकट हुए, सीता जी के सामने जाकर बैठे। तो पहले मुद्रिका डाली, तो मुद्रिका देख करके विचार कर, मुद्रिका कहाँ से आई, ये मुद्रिका तो श्री रघुनाथ जी महाराज की है, माया से ऐसी रच नहीं जाएगी, माया से तो रच नहीं सकते, राम नाम इसके ऊपर अंकित है, ऐसी ये मुद्रिका कहाँ से आई, क्या बात है, कौन लाया। तो फिर वह क्या भाई प्रकट क्यों हो, भाई भाई तुम प्रकट हो जाओ, रघुनाथ जी की मुद्रिका लाई। तो चट सामने हनुमान जी चले गए, ये मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, ये रघुनाथ जी महाराज सेना ने दी है, ये मुद्रिका मैं लाया हूँ, तो विश्वास नहीं होगा, रावण मंत्र का रूप धारण के क्या पता है विश्वास क्या है। तो मैं आया हूँ माँ, राम जी का भगत हूँ। तो बातें कही तो सीता जी जल्दी जल्दी विश्वास नहीं हुआ, तो फिर बताया कि महाराज माता जी मैं रघुनाथ जी का दास हूँ, करुणा निधान सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो करुणा निधान शब्द था वो सीता जी बोलती थी, और सीता जी और राम के सिवाय दूसरे किसी को पता नहीं था। तो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जावन सराबर हो, ये सती जी जब सती के सामने उस वाटिका में सीता जी जब सती की उपासना करती है तो वहां सीता कहती है, सती कहती है पार्वती, वो कह रही है कि सत्य स्वभाव ये करुणा निधान सुदान ये आपके स्वभाव को जानते हैं, आप वो जानते हैं मिलेंगे। तो करुणा निधान नाम उसने सीता जी ने पकड़ लिया, करुणा निधान। तो आप उस बात करुणा निधान ऐसे करो, करुणा निधान ऐसे करो, वो करुणा निधान कह के सीता जी बोलती थी। पति का नाम लेना नहीं चाहिए तो राम नाम नहीं बोलते, करुणा निधान बोलते थे। हनुमान जी ने देखा कि मेरे पर विश्वास नहीं होता तो कहते सत्य शपथ करुणा निधान की, तब ये दास है। अब हमारे राम जी के सिवाय तीसरे को पता नहीं इस बात का, इस नाम तो मैं ही कहती हूँ, राम जी सुनते हैं और ये कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की, तो राम जी का दास है, तब विश्वास हो गया। फिर महाराजा बड़ी बात गई कि बेटा मैं कितनी दुखी हूँ, राम जी कब आएंगे? कहते माँ तुम धीरज करो, राम जी आएंगे। तो वहां पास सब कह दी राम जी आएंगे, बंदरों को लेकर के आएंगे और रावण पर विजय करेंगे, सब विजय करके तेरे को ले जाएंगे, नारद आदि दश गाएंगे, त्रिलोक में सब ऋषि मुनि कहेंगे, सब राजी हो जाएंगे। जैसे राम जामवन ने हनुमान जी महाराज को कहा वे की वे बातें जाहिर कह दी, इतने भोले भाले हैं अपनी लगे थे कुछ नहीं, जामवन कह वे आएंगे थे वो बातें सीता जी से कह दी। सीता जी ने कह तुम्हारे जैसे ये बंदर है उनको एक एक ग्रास कर जाएंगे, राक्षस यहाँ पर है, तुम भोला समझता नहीं बच्चा है, तो खा जाएंगे राक्षस। माँ मैं देखा यूँ कहते हैं भगवान ने रूप देखाया बड़ा, हमारे बंदरों में ताकत नहीं है, पर माँ रघुनाथ जी महाराज की कृपा है, इस बात कोई डर नहीं है। ऐसे देखकर माँ बड़ी राजी हुई, खुश हो गई। तो खुश हो गई माँ और इस बच्चा ठहरा हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने देखा तो वृक्षों के फल लगे हुए बढ़िया बढ़िया, वे फल देखे इधर माँ मिल गई। माँ मिल जाए जो बच्चे को भूख लग जाती है, माँ मिले माँ को बच्चे को खिलाने की मन में आती है, कुछ खिला दूं, सबरी के मन में खिलाने की आई, कुशला के मन में खिलाने की आई, तो ऐसे सीता जी के मन में आई। तो हनुमान जी ने कहा माँ ये सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। मैं कहा ना ना राक्षस कहा जाएंगे कहीं, तो इनका डर माता मोहिना है, राक्षसों का डर तो मेरा नहीं है, अगर तुम प्रसन्न हो जाओ तो छोरा फल खाएगा तो माँ तो राजी होगी, छोरा जीम ले बस भोजन अच्छा कर लेता है तो माँ कहती आज जी शुरू हो गयो छोरो जीम ले उसी तरह। तो कह जाओ बेटा खाओ, देखो राम जी को याद करके जाना और मीठे तात मधुर फल खाओ, मीठे मीठे फल खाना, खट्टे फल खाओ छोरे का कंठ खराब हो जाए, इस बार से मीठे मीठे फल खाओ बेटा जाओ। तो नीचे पड़े वो कोई मिलेगा ज्यादा तोड़े तो अपद्रव होगा, राक्षस कोई आएंगे। अब महाराज नीचे पड़े वो फल कह दिया माँ ने, अब क्या करे, तो रुखड़ों को उठा उठा कर उखाड़ करके उल्टा रह दिया, अब सब पृथ्वी पर ही पड़े सब फल उखाड़ कर रख दिया, फल खाते राक्षसों को लगा पता, पर आज वे आए तो मारने के लगे, जिन में ही मारा तन में मारा, तन भर बांधे तुम्हें तो मारा, रावण के सामने कहा ही तो मेरे को मारे मैंने उनको मारा, इस पर तुम्हारे बेटे ने मेरे को बांध दिया, ऐसा दिमाचा बचाई दिमाचा होकर जो राक्षसों को सब तर्क कर दिया। ऐसे फिर बना हनुमान जी महाराज विजय करके और वही गए तो अक्षय कुमार को भेजा, रावण ने अपने सूर भी बेटे को भेजा। अब बेटे को भेजा तो वो आया सब वो लड़ने के लिए, तो उनको खत्म कर दिया। अब क्या बताओ हनुमान जी महाराज की बात, बात तो चली थी घोषणा हुई और बीच में आ गए हनुमान जी महाराज, बीच में बुद्धि का भी आ गई। अब कितनी बात कहें, समय इधर हुआ है अभी, तो एक थोड़ा सा एक पद सुन लो फिर नाम कीर्तन करें भी यही छोड़ देते हैं कहाँ तक बताओ। तो वहाँ त्रिदिटा ने कहा कि लंका जारी तो हनुमान जी को बांध कर ले गए तो अंग भंग कर पठाओ मंदिर अंग भंग कर दो। तो रावण का ऐसा करे पूछ बहुत प्यारा लगता है बंधनों को पूछ के लपेट लेकर के आग लगा दो। तो भाई सहाय शारद में जाना हनुमान जी बोले सरस्वती ने सहायता कर दी अब सामग्री नोट कर दी सूची मैं लगा दूंगा।